वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी प्रभु की निकटता में रहकर कुशल हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे मित्र, पिछले अध्ययन में हमने एक नई पुस्तक लुका रचित सुसमाचार के परिचय और रूपरेखा को देखा था। आज हम लुका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और इसमें हम इन विषयों पर विचार करेंगे। सुसमाचार का उद्देश्य, जिब्राइल स्वर्गदूत का जकर्याह पर प्रकट होना और यूहन्ना के जन्म की घोषणा करना, जिब्राइल स्वर्गदूत का मरियम पर प्रकट होना और यीशु का कुंवारी से जन्म लेने की घोषणा करना, मरियम का एलिशिबा से मिलने के लिए जाना और तब यूहन्ना का जन्म, इन विषयों को हम देखेंगे। प्रिय मित्र, वैद्य लुका अपने सुसमाचार को ऐतिहासिक रीति से अन्य सहदर्शी सुसमाचारों से पहले आरंभ करते हैं। 400 साल से भी अधिक समय से स्वर्ग शांत था और जिब्राइल स्वर्गदूत ने प्रार्थना की सुनहरी वेदी के पास यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म की घोषणा करने के द्वारा उस शांति को तोड़ा। लुका हमें इसकी पृष्ठभूमि और साथ ही साथ यूहन्ना और यीशु के जन्म की बातों को भी बताते हैं। प्रिय मित्र, इस अध्याय में 3 गीत हैं। पहला, एलिशेबा को मरियम का अभिवादन, पद 42 से 45। दूसरा, मरियम का भजन, पद 46 से 55। और तीसरा, जकर्याह की भविष्यवाणी, पद 68 से 79। आइए अब हम सुसमाचार के उद्देश्य को देखें। हम लुका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 से 4 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, कि तू यह जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। इस भाग में 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। यह है चश्मदीद गवाह और इसके लिए यूनानी शब्द है ऑटोप्टाई ऑटो, जिसका अर्थ है जो स्वयं से है, और ओप्सोमाई का अर्थ है देखना, अपने लिए देखना। जो एक चश्मदीद गवाह होता है, यह एक चिकित्सा शास्त्र से संबंध रखने वाला नाम है जिसका अर्थ है व्यक्तिगत निरीक्षण करना। वास्तव में जो बात वैद्य लुका करना चाहते हैं वह है, हम सब गवाह हैं जिन्होंने व्यक्तिगत निरीक्षण किया और मैं आपको लिख रहा हूं जिसे हम सब ने निरीक्षण में प्राप्त किया है। मेरे मित्र, अब दूसरा महत्वपूर्ण शब्द जिसे वैद्य लुका प्रयोग करते हैं वह है सेवक। यूनानी भाषा में यह हुपेरा टाई है जिसका अर्थ है दिशा दिखाने वाला या नियंत्रण करने वाला। जैसे एक नाविक नैया को सही दिशा में ले जाने के लिए नाव खेता है, उसी प्रकार अस्पतालों में अंतरंग डॉक्टर हैं। वैद्य लुका कह रहे हैं कि वे सब एक महान चिकित्सक के अधीन अंतरंग थे। हमें वैद्य लुका एक वैद्य और विद्वान होने के नाते बता रहे हैं कि उसने जिन लोगों को अपनी आंखों से देखा और सुना था, उन गवाहों के द्वारा लिखे गए सभी लेखों का निरीक्षण किया। प्रिय मित्र, इस अध्याय के पहले 4 पद एक आश्चर्यजनक आरंभ करते हैं। लुका अपने इस सुसमाचार को लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में निश्चयता देने के लिए लिखा। मेरे मित्र, आपके पास कितना अधिक विश्वास या भरोसा है? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की संतान हैं? क्या आप जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है? मुझे उस व्यक्ति के लिए दुख होता है जिसे इन बातों के विषय में निश्चयता नहीं है। क्या आप विश्वास में लड़खड़ाते और कहते हैं कि मुझे अपने उद्धार के बारे में या बाइबल में पूरा भरोसा नहीं है? मुझे अनुमान होता है कि मुझ में अधिक विश्वास नहीं है। प्रिय मित्र, अधिक विश्वास न होना हो सकता है कि यह आपकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या हो सकती है कि आप अधिक नहीं जानते हैं। आप रोमियो के पत्र 10 अध्याय उसके 17 पद में देखें। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर का वचन जानते तो आप अवश्य विश्वास करते। जो लोग बाइबल से अनभिज्ञ हैं उनके साथ यह समस्या है। समस्या बाइबल और प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है, परंतु समस्या हमारे साथ है। अब हम अगले विषय को देखेंगे कि जिब्राइल स्वर्गदूत जकरिया पर प्रकट होता है और यूहन्ना के जन्म की घोषणा करता है। हम लुकास के सुसमाचार 1 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। मित्र, वैद लुका ऐतिहासिक तरीके से नए नियम का आरंभ करते हैं। 400 साल शांत रहने के बाद अब अपनी चुप्पी तोड़कर परमेश्वर अपनी बात को बता रहे हैं। लुका यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म की तरफ पीछे लौटते हैं, जहां पर जिब्राइल स्वर्गदूत यूहन्ना के पिता पर प्रकट हुआ जब वह मंदिर में सेवा दे रहा था। यूहन्ना के पिता जकरिया और माता इलिशिबा थी। जकरिया का अर्थ है परमेश्वर स्मरण करता है और इलिशिबा का अर्थ है उसकी शपथ। उन दोनों के नाम का अर्थ एक साथ इस प्रकार से है, परमेश्वर अपने शपथ को स्मरण रखता है। परमेश्वर ने शपथ कब खाई थी? भजन संहिता 89:34-37 पद में परमेश्वर की शपथ का लेख है, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा की नाई और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी की नाई सदा बना रहेगा। प्रिय मित्र, परमेश्वर ने दाऊद से शपथ खाई कि उसके वंशज का एक जन अनंत काल तक राज्य करेगा और मसीह उस वंशज का है। परमेश्वर अपने शपथ को स्मरण रखते हैं और परमेश्वर 400 साल की चुप्पी के बाद मानव इतिहास में प्रवेश करने के लिए चुप्पी को तोड़ते हैं और वे तैयार होते हैं। प्रिय मित्र, इस बात पर ध्यान दें कि पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि जकरिया और इलिशिबा दोनों ही धर्मी थे, जिसका मतलब है कि दोनों सही थे। वे कैसे सही थे? उन्होंने जान लिया था कि वे पापी हैं और वे आवश्यक बलिदान लेकर आए। हम लुका 1 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, उनके कोई भी संतान न थी। यहाँ पर एक बूढ़े दंपति हैं जिनके पास कोई भी संतान नहीं है। बच्चे न होना या निसंतान होना इब्रानी महिला के लिए व्यवहारिक रूप से अपमान की बात होती थी और इलिशिबा निसंतान थी। जकरिया लेवी गोत्र से था जो मंदिर में सेवा करता था। हम लुका 1 अध्याय के 8-12 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए, और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक दूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। जकरिया सुनहरी वेदी के पास याजक का काम कर रहा था जो प्रार्थना का स्थान था, और यह संध्या के बलिदान का समय था, और इस सेवा के समय उसे विशेषकर वेदी पर धूप जलाना था, और अचानक एक स्वर्गदूत उसे प्रकट हुआ अर्थात दिखाई दिया। यदि आप स्वर्गदूत को देखते तो क्या करते? आपकी प्रतिक्रिया भी इसी व्यक्ति की तरह होती जो उसकी थी। आप भी घबरा जाते और भयभीत हो गए होते। हम लुका 1:13 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। प्रिय मित्र, जकरिया एक पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहा था और इलिशिबा भी एक पुत्र के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं सोचता हूं कि बहुत लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे ताकि उन्हें एक पुत्र प्राप्ति हो। मैं कैसे जानता हूं कि वह एक पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहा था? या इसलिए क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तब हम लुका 1:14-15 पद में आगे पढ़ते हैं, और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जकर्या और इलिसबा के पुत्र को नाजीर होना था। नाजीर होने के लिए उसे प्रतिज्ञा लेनी होती थी कि वह कभी दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा। उसे अपने आनंद को पवित्र आत्मा और परमेश्वर में प्राप्त करना था। इसी कारण से पौलुस इफिसियों के पत्र 5 अध्याय उसके 18 पद में कहता है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रिय मित्र, अपना आनंद परमेश्वर से प्राप्त करें, न कि बोतल अर्थात शराब पीकर। आज बहुत से लोग हैं जो बोतल से अर्थात शराब पीकर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मैं यहाँ पर खटोले में पड़े बच्चे के बारे में नहीं कह रहा हूँ, परंतु उन बड़े बच्चों के बारे में कह रहा हूँ जो बार और शराब के अड्डों में पाए जाते हैं। और आज कुछ मसीही हैं जिन्हें जोश और खरोश से भरने की जरूरत है, ताकि वे जीवन का सामना कर सकें। हमें इस बात को पहचानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें जीवन का सामना करने के लिए सामर्थ्य दे सकता है। हम लूका 1 अध्याय के 16 और 17 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और इसराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह इलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रिय मित्र, हमें इसे अच्छी तरह समझना है। यद्यपि यूहन्ना बपतिस्मा दाता इलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चला, परंतु वह इलिय्याह नहीं था। वो पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेरेगा। यूहन्ना पीढ़ी के अंतराल को जोड़ने वाला था। आज हमारी समस्या अधिक वयस्क और जवानों के बीच के अंतराल की नहीं है, परंतु समस्या वयस्क और परमेश्वर के बीच के अंतराल की है। यदि वयस्कों का संबंध परमेश्वर के साथ ठीक से होता है, तो उन्हें जवानों के साथ कोई परेशानी नहीं होती जो अभी है। हम लूका 1 अध्याय के 18 पद में पढ़ते हैं, जकर्याह ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। मेरे मित्र, मैं ऐसे पद के लिए आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं, परंतु हंस अवश्य सकता हूं। बहुत से लोग बाइबल में परिहास या मजाक को नहीं ढूंढ पाते हैं, परंतु परिहास या मजाक और यह पद हमें इसका एक स्वाद चखने को देता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो याजक है, जो परमेश्वर के पास प्रार्थना में गया है, धूप देने की वेदी के पास। वह कहता है, हे परमेश्वर, मुझे एक पुत्र दे। और जब परमेश्वर जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा कहता है कि मैं तुम्हें एक पुत्र देने जा रहा हूं, तब जकर्याह उत्तर देता है कि मैं यह कैसे जानूं, मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है और मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, और हम नहीं सोचते हैं कि हमसे संतान उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी वह प्रार्थना कर रहा है। मित्र, क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है कि आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और वास्तव में आप विश्वास नहीं करते हैं जो वह आपको देने पर है? यह भी एक कारण है कि हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पाते हैं, हमारे पास विश्वास ही नहीं होता है। जकर्याह भी एक पूर्णतया मनुष्य था और मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता, परंतु उस पर हंस अवश्य सकता हूं, क्योंकि मैंने भी किसी समय ऐसी ही प्रार्थना की थी। अब हम लूका 1 अध्याय के 19 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। प्रिय मित्र, परमेश्वर के वचन पर परमेश्वर की मुहर है। परमेश्वर का वचन अधिकार रखता है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं वह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है वह महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। हम लूका 1 अध्याय के 20 पद में पढ़ते हैं, और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। जकर्याह जो अच्छी तरह बात करता था, अब कुछ समय के लिए गूंगा हो जाएगा। प्रिय मित्र, अविश्वास हमेशा गूंगा होता है, इसका मतलब इसके पास कोई भी संदेश नहीं होता है। मैं एलिजाबेथ वेरेट ब्राउनिंग के साथ सहमत होता हूं, जिसने कहा है कि जो बिना विश्वास के है उसे चुप रहना चाहिए। चारों तरफ बहुत से बकवादी हैं जो सर्वदा फव्वारे की तरह अपने अविश्वास के बारे में दूर से ही बोलते रहते हैं। यदि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो उन्हें चुप रहना चाहिए। उस व्यक्ति को बोलना चाहिए जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसके पास कुछ कहने के लिए भी है। लुका 1:21-22 में हम पढ़ते हैं, और लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। प्रिय मित्र, यह परिच्छेद भी मेरा ध्यान आकर्षित करता है। आप देखें कि 400 साल की चुप्पी के बाद फिर से परमेश्वर मानव जाति से संपर्क स्थापित करते हैं, परंतु जिस व्यक्ति से उसने संपर्क किया वह परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करता है और अब वह गूंगा बन गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि वह लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि वह गूंगा है? आप कैसे लोगों को बताएंगे कि आपने स्वर्गदूत को देखा है और आप बात नहीं कर सकते हैं? मेरी समझ से यह उतना सरल नहीं था। आप उन इशारों के बारे में सोचें जिन्हें जकरिया ने अपनी दशा को बताने के लिए उपयोग में लाया। निश्चित रूप से यह बहुत ही हास्यजनक रहा होगा। हम लुका 1:23 में पढ़ते हैं, जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। बहुत पहले राजा दाऊद ने याजकों के लिए मंदिर में सेवा करने का निश्चित समय रखा था, उसके पश्चात उनकी छुट्टी होती थी। एक याजक एक निश्चित समय तक सेवा करता था, उसके बाद थोड़े समय के लिए उसे छुट्टी दी जाती थी, तब दूसरा याजक काम करता था। यही बात जकरिया के साथ भी हुई, परंतु उसको अपनी सेवा की अवधि बिना बातचीत किए ही पूरी करनी थी। जब उसके जाने का समय आ गया तो उसे भी चुपचाप ही रहना पड़ा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वह वहां से घर गया और इलिशबा की बात को सुना। लुका 1:24-25 में हम पढ़ते हैं, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह करके छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। यहाँ पर यह एक मजेदार स्थिति है। जकरिया बोल नहीं सकता है। इलिशबा अपनी स्थिति के कारण कई महीनों तक एकांत अवस्था में रही। मैं सोचता हूँ कि उस समय के दौरान में वह जकरिया के साथ इशारों से बात करती रही होगी, उसे निरंतर स्मरण कराती रही होगी कि जकरिया, हम एक पुत्र को पाने वाले हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिब्राइल मरियम पर प्रकट होते हैं और यीशु के कुंवारी से जन्म लेने की घोषणा करते हैं। लुकार्ची सुसमाचार 1:26-27 में लिखा है, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। प्रिय मित्र, अब हम यरूशलेम से नासरत की ओर बढ़ते हैं। जकरिया पर जिब्राइल स्वर्गदूत के प्रकट होने के 6 महीने बाद वह मरियम पर प्रकट हुआ। एक ही पद में 2 बार उसे कुंवारी कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि कुंवारी क्या है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। कुंवारी एक महिला है जो प्राकृतिक या स्वाभाविक तरीके से बच्चा नहीं जन सकती, क्योंकि उसका संबंध किसी पुरुष के साथ कभी नहीं हुआ जो बच्चे के जन्म को संभव कर सके। मित्र, किसी को इस विषय पर आज स्पष्ट रूप से बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ पुरुष है जो कह रहे हैं कि जीव विज्ञानी तरीके से कुंवारी से जन्म असंभव है। जब मैं लोगों को इस वाक्य को कहते हुए सुनता हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को बुलाकर उससे कुछ कहूँ, मैं आपके साथ दोपहर का भोजन करना चाहता हूँ और आपको चिड़ियों और मधुमक्खियों के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में अधिक नहीं जानते हैं। पवित्र शास्त्र स्पष्ट करती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से हुआ। मेरे मित्र, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जब कोई अविश्वासी कहता है कि वह कुंवारी से जन्मे, विश्वास नहीं करता है, परंतु जब वह कहता है कि बाइबल इसके बारे में शिक्षा नहीं देती है, तब मैं विरोध करता हूँ, और जो यह कहता है उसे कहता हूँ स्पष्ट रूप से कि उसकी बुद्धि में कुछ कमी या त्रुटि है, या वह मधुमक्खियों या चिड़ियों के ज्ञान से अनभिज्ञ है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि लूका एक डॉक्टर था और वह कुंवारी से जन्म के विषय में बहुत विस्तृत स्पष्टीकरण देता है। हम लुका 1:28 में पढ़ते हैं, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। प्रिय मित्र, प्रोटेस्टेंट मत के लोगों के बीच एक धारणा है कि वे मरियम की भूमिका को निम्न स्तर से रखते हैं, परंतु यह पद हमें बताती है कि वह अत्यंत कृपा पात्री थी। जो भी हो, मैं एक ही सांस के साथ आगे कहना चाहता हूँ कि वह स्त्रियों में धन्य थी, स्त्रियों में श्रेष्ठ नहीं। उसे स्त्रियों में उच्च स्तर पर नहीं उठाया गया, परंतु उसने स्त्रीत्व या नारीत्व को ऊंचा उठाया। यही वह भूमिका थी जिसे उसने निभाया। प्रिय मित्र, यह कहना बहुत आसान या सरल होता है कि एक स्त्री संसार में पाप लाई, परंतु इस बात को स्मरण रखें कि यह एक स्त्री ही थी और पुरुष नहीं जिसने मुक्तिदाता को इस संसार में लाया। हम लूका 1:29 में आगे पढ़ते हैं, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। प्रिय मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम स्वर्गदूत की बात को सुनकर अत्यंत घबरा गई। जब कभी असाधारण एक साधारण को स्पर्श करता है तो हमेशा भय उत्पन्न होता है। मरियम भी सोच में पड़ गई कि यह किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। मैं ऐसा कहने से नहीं रोक सकता, परंतु मरियम की प्रतिक्रिया बिल्कुल मेरे एक मित्र के जैसे थी। कई वर्षों पूर्व उसने मुझसे कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं भूत पर कभी विश्वास नहीं करता था जब तक मैंने उसे नहीं देख लिया। मित्र, आप मेरा विश्वास कीजिए, जब आप एक स्वर्गदूत को देखते हैं तो यह आपका अधिकार होता है कि आप डरें या भयभीत हों। मैं सोचता हूं कि यदि मैं एक स्वर्गदूत को देखता तो मैं भी भयभीत हो जाता। अब हम लूका 1:30-33 में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। यह एक सरल भाषा है और इसका गलत अर्थ निकालने का कोई भी मार्ग या तरीका नहीं है। यह परिच्छेद बिल्कुल शाब्दिक है, अर्थात हूबहू है। जो लोग कुंवारी से जन्म का इनकार करते हैं, वे यह भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु अपने पिता दाऊद की सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह समझा गया है कि जिसके बारे लूका लिख रहे हैं यह बिल्कुल शाब्दिक है। कुंवारी की कोख और दाऊद का सिंहासन दोनों ही शाब्दिक है। वह अक्षरशः याकूब के घराने पर राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। यह राज्य भी सच और वास्तविकता में है। हम लूका 1:34 में पढ़ते हैं, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। प्रिय मित्र, मरियम ही सबसे पहली थी जिसने कुंवारी से जन्म के बारे में स्वर्गदूत से प्रश्न किया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है। यह आज भी एक अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर लूका जिब्राइल स्वर्गदूत का उदाहरण लेते और हमें इसका उत्तर देते हैं। लूका 1:35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा, इसी कारण वह पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह के जन्म के साथ किसी पुरुष या मनुष्य का कोई भी लेना देना नहीं था। हमें लय व्यवस्था की पुस्तक में बताया गया कि बच्चे के जन्म के कारण स्त्री अशुद्ध ठहराई गई, क्योंकि उसने एक पापी को इस संसार में जन्म दिया है। परंतु मरियम से कहा गया कि वह इस संसार में एक पापी को नहीं ला रही है, वह जो जन्म लेगा वह पवित्र है। स्त्री और पुरुष के संबंध से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह स्वाभाविक रूप से पापी होता है, क्योंकि मनुष्य पाप के स्वभाव को ही उत्पन्न कर सकता है। सिर्फ कुंवारी से जन्म के द्वारा ही परमेश्वर मनुष्य के परिवार में पवित्र चीज को ला सकते थे। भजन संहिता 51:5 में दाऊद ने कहा, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। परंतु मरियम का पुत्र अलग होगा, वह कुंवारी से जन्मा हुआ होगा। प्रिय मित्र, यदि आप चाहते हैं कि आप कुंवारी से जन्म का इनकार कर सकते हैं, तो यदि आप एक अविश्वासी हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका इनकार करेंगे। जो भी हो, यदि आप मुझे लिखकर यह कहते हैं कि आप एक मसीही नहीं हैं, फिर भी कुंवारी से जन्म पर विश्वास करते हैं, तो मैं बहुत ही भयंकरता से दुखी होऊंगा। यदि आप मसीही नहीं हैं, तो सच है कि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं। जो भी हो, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बाइबल कुंवारी से जन्म के बारे में शिक्षा नहीं देती है, क्योंकि यह शिक्षा देती है। प्रिय मित्र, क्या आप जानते हैं कि क्यों यह बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाने जा रहा है? क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है। इस बात को याद रखें कि वैद या डॉक्टर लुका अपने सुसमाचार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखते हैं। वह कहते हैं कि उसने यीशु नासरी का परीक्षण लिया है, उसने पाया है कि यीशु परमेश्वर है। लुका अपने वही निष्कर्ष में पहुंचते हैं जो यूहन्ना अपने सुसमाचार के निष्कर्ष में पहुंचते हैं, परंतु उसके तरीके और तकनीकी भिन्न हैं। डॉक्टर लुका ने अपनी खोज को प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही सरल और साधारण भाषा का उपयोग किया है, और यदि हम उसके संदेश को नहीं समझ सकते हैं तो हमें फिर से वापस जाकर क ख ग घ पढ़ना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर लुका की भाषा बहुत सरल है और सब लोग समझ सकते हैं। प्रिय मित्र, आज हमारे अध्ययन का समय यहीं पर समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने कुमारी के जन्म की बातों को सीख लिया है कि यह परमेश्वर के द्वारा ही संभव है, ताकि यीशु मसीह के आने के द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और समझने में सहायता प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हम ईश्वर।